इतना है प्यारा
शांति। आज इस सभा के बीच हम परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी का सम्मान सहित बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी साकार बाबा बाप दादा की बहुत लाडली रही हैं। साकार मुरलियों में हमने कई बार आदरणीय दीदी जी को बहुत सारे विशेषताओं सहित याद करते हुए सुना है। दीदी जी 40 वर्ष तक विदेश में सेवाएं दी हैं। अब भी विदेश की सेवाओं को संभालते हुए ज्ञान सरोवर में पूरा ही ज्ञान सरोवर एक डायरेक्टर के रूप में सेवाओं को सुचारू संभाल रही हैं। बहुत ही विनम्र स्वभाव और स्पष्ट वाणी आपकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय दीदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आज बैलेंस के द्वारा हम ब्लिसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन दें आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। आप में से कुमार कुमारी कितने हैं, जरा हाथ उठाना। थोड़े कुमार तो एक दो ही है, कुमारियां भी चार पांच है, बाकी सब गृहस्थी है। तो गृहस्थियों को अपने को क्या समझना है, समझते हो? बुद्धि में पक्का देखो, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे पोते, ऐसे तो नहीं है, हाँ? मेरा घर। तो ये अपने आप को चेक करना है, मैं और मेरा है या नहीं। आजकल बाबा क्या मुरली में बताया आज बाबा ने, हाँ? पुरानी दुनिया खत्म होनी है और आपका काम क्या है, हमारा धंधा कौन सा है, हाँ? कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आजकल बहुत फायदे वाला होता है ना, रियल एस्टेट। तो हमारा काम है कंस्ट्रक्शन करना, और विनाश का काम यूरोप यादववासी करेंगे, मिसाइल से, पेट से मिसाइल नहीं निकलेगा, बुद्धि से मुसल तैयार किया है। इसलिए विनाश कभी भी होगा, इसलिए बाबा ने क्या कहा, हाँ? हर घड़ी अंतिम समझो, क्योंकि अंतिम घड़ी समझेंगे तो क्या होगा, बाबा की याद रहेंगे, अंत मते सुगते। तो इसलिए बाबा ने कहा हर घड़ी अंतिम समझो और बाबा को याद करो। बाबा को कैसे याद करें, यदि बिंदु याद नहीं रहता है तो, हाँ, घर को याद करो और सुखधाम को याद करो, परम धाम को याद करो और सुखधाम को याद करो। तो इसलिए घर में भर रहो, परंतु दुनिया को हम क्या चैलेंज करते हैं, सन्यासियों को, महात्माओं को हम क्या चैलेंज करते हैं कि आपने तो घर बार छोड़ा, क्योंकि घर में रहेंगे तो स्त्री देखेंगे तो विकार पैदा होगा, धंधा करेंगे तो लोभ होगा, बच्चों में मोह होगा, तो इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, घर में ही ना रहे तो इस सब विकारों की बात ना रहे, इसलिए उन्होंने घर बार छोड़ा। और हम लोग घर गृह में रहकर पवित्र रहते हैं, तो ये हम चैलेंज करते हैं। तो इसी रीत से हमें अभी चैलेंज को प्रैक्टिकल में प्रूव करना है कि हम घर गृह में रहकर पवित्र रहते हैं, लौकिक भी संभालते हैं अलौकिक सेवा भी करते हैं। तो पहला बैलेंस रखना है शरीर और आत्मा का। शरीर को कितनी बारी भोजन देते हैं आप लोग? कम से कम 3 बार, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, यहां भी और घर में भी ने? हाँ? फिर चाय के साथ नाश्ता खाते हैं या नहीं? हाँ? चाय के साथ भी कभी बिस्किट कभी कुछ खा लिया, और बीच बीच में कुछ सामने कुछ फ्रिज में आ गया देखने में तो मुंह में डाल दिया। और जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी क्या करेंगे, बीच बीच में चाय का कप पीने चले जाएंगे। जो सिगरेट फूंकते हैं वो सिगरेट पान करने चले जाएंगे। आजकल यहाँ ऑफिस में अलाउ करते हैं सिगरेट फूंकना या नहीं? नहीं ना, क्योंकि वहां विदेश में तो सिगरेट नहीं पी सकते हैं। सिगरेट पान ऑफिस में नहीं करना, नीचे जाओ ऑफिस के बाहर रास्ते पे जाकर करो। तो क्या है, बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं। और जहां समझो जरा मालिक थोड़ा ठंडा होता है तो क्या है, गपशप लगाने बैठ जाते हैं, चाय पीते पीते गपशप। तो इसलिए अभी हमको क्या करना है, कम से कम 3 बारी बाबा की याद में आधा आधा घंटा बैठना है, ठीक है ना? अमृत वेला, मुरली के पहले, शाम को। हमारा तो नियम वैसे 1.25 घंटा है ना, 4 से 4:45 फिर 6:30 से 7 और फिर शाम को हर एक सेंटर का अपना अपना कम से कम आधा घंटा होता है। तो इसलिए अभी हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि दिन में 3 बारी बैठकर बाबा को याद कर, ऐसे नहीं चलते फिरते याद कर लिया। और कम से कम 1 बारी ज्ञान स्नान करना है, चाहे मुरली पढ़ो चाहे मुरली सुनो चाहे सेंटर पर जाओ चाहे सवेरे जाओ चाहे शाम को जाओ। आप में से कौन है पीस ऑफ माइंड चैनल पर मुरली सुनते हैं, जरा हाथ उठाना। 15-20 है, देखो आज पीस ऑफ माइंड चैनल है। और जिनके पास आईफोन है तो फोन पर मुरली सुन सकते हैं, हिंदी है इंग्लिश है। आप लोग तो सब हिंदी समझते हैं ना, बाकी साउथ इंडिया में अपनी अपनी भाषा में मुरली मिल जाती है, तो कई भाषाओं में मुरली फोन पर मिल जाती है या कंप्यूटर पर मिल जाती है या आईपैड पर मिल जाती है। तो इसलिए ये देखना है कम से कम एक बार ज्ञान स्नान करना है, नहीं तो क्या है, आत्मा वैसे भी कमजोर थी ना। रियलाइज करते हैं कि हमारी आत्मा में ताकत नहीं जो मन बुद्धि कर्मेंद्रियों को हम वश कर सके। अभी बाबा की याद के द्वारा हमें इनको वश में करना, तो इसलिए बाबा आजकल अपना पहला लेसन पक्का करते हैं, कराते हैं, देही अभिमानी बनो, देहभान ना हो। तो ले लेसन पक्का होना चाहिए, देहभान ना हो, मैं पना ना हो, मेरा ना हो। तो आत्मा को भोजन देना है, शरीर को तो भोजन देते हैं ना। ऐसा कोई है जो यहाँ एक ही टाइम खाना खाता है, ऐसा कोई है? कोई नहीं, एक भी नहीं। देखो विदेश में तो क्या होता है, जो सेंटर पर रहते हैं ना, उन्हों को सवेरे 5:30 उन्हों का योग होता है, 6 बजे मुरली होती है, या तो 6 बजे योग होगा, 6:30 मुरली होंगे, उसके पहले अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाना होता है, एक ही बार खाना पकाने का टाइम मिलता है, क्योंकि फुल टाइम कोई कोई तो नौकरी करते है फुल टाइम। तो मुरली सुनाई, नाश्ता किया, भागे। और एशिया में तो एक बारी पक्का सवेरे सवेरे खाना पका लेते हैं, परंतु ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे, सवेरे सीरियल दूध में खा लेंगे या टोस्ट बनाकर खा लेंगे। लंच के लिए या तो सैंडविच बना के जाएंगे, या तो एप्पल खा लेंगे, या तो वो लोग तो गज्जर भी खाते हैं, कैरेट एप्पल, या तो फ्रूट का जूस पी लेंगे, या फ्रूट पील खा लेंगे, या ऐसा करते हैं। शाम को आकर खाना पका के खाना एक टाइम पकाते हैं। और कोई तो फिर क्या है, एक टाइम खाना पकाने का भी टाइम नहीं, एक एक ही बहन रहती है, नौकरी भी करनी है, सेंटर भी संभालना है, शॉपिंग भी करनी है, सफाई भी करनी है, तो क्या करेंगे, ब्रेड बनाकर रख दी और टमाटो और चीज या ऐसा कुछ लगाकर उसके ऊपर खा लिया, या बीन्स का डब्बा खरीद के लेते थे। तो प्रिजर्वेशन में रखते हैं ना, डब्बे आते हैं या तो फ्रोजन आता है, हाँ, तो क्या करते हैं, वो फ्रोजन है उसको गर्म कर लिया या छोंक लगा दिया, काम उतर गया। या कोई कोई है तो सलाद ही खाते हैं, आजकल विदेश में फैशन है सलाद खाने का। तो पकाने की भी जरकार नहीं, क्योंकि सलाद में ज्यादा सत्व होता है। खाना पकाने में तो इंडिया वाले क्या करते हैं, खूब तेल डाल के खूब भूनते, सारा उसका विटामिन खत्म कर देते हैं। तो डाइट भी हमारा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भोजन है दाल रोटी चावल सब्जी सलाद, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, प्रोटीन भी आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, विटामिन भी आ जाते हैं। तो यहाँ तो क्योंकि माताएं ज्यादा काम नहीं करती है, यदि बहू काम करती है, सासू घर में है, वो खाना पका देती है। यदि देवरानी काम करती है, जेठानी नहीं करती है, वो खाना पका लेंगे। घर में कोई न कोई तो माता होती है जो घर काम करती है, कोई नौकरी करते हैं। तो इसलिए ये बैलेंस रखना है, घर को भी संभालना है, ये भी जिम्मेवारी है, बच्चों को भी प्यार से संभालना है। परंतु मेरापन ना हो, मोह होगा तो दुख होगा। तो प्यार भी करना है पर मोह भी ना हो, न्यारा और प्यारा। जैसे बाबा थे ना, हमारे सामने तो एग्जाम्पल थे, ब्रह्मा बाबा। शुरू में क्या था, सारा परिवार साथ में रहता था, परंतु बाबा बहुत न्यारा था। आपको मालूम होगा, जब नारायण दादा उसने यज्ञ छोड़ के गया, उसने कहा कि मैं दुनिया देखूं। तो उसको धंधा नौकरी करना था और एक बहन के साथ, यज्ञ की बहन के साथ प्यार हो गया, तो दोनों निकल गए यज्ञ से। बाबा ने कितना पैसा दिया मालूम है? 5 रुपया दिया, यहां से अहमदाबाद की टिकट, उससे ज्यादा नहीं। कहा तुम अभी अपना भविष्य बनाओ, क्योंकि बाबा ने ट्रस्ट कर दिया था सब। बाबा ने यज्ञ में दे दिया था, बच्चों ने कुछ दिया नहीं था, अपनी कमाई थी बाबा की, फिर भी बच्चों को पूछ के ट्रस्ट में डाला। तो बाबा ने कहा अभी मेरा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए आप न लाए हैं न ले जाएंगे, इतना नष्ट मवाते। बच्चा जा रहा था, कहा जाओ और क्या करे। तो क्या है, बाबा ने प्रूफ दिखाया कैसे न्यारा और प्यारा। भाव विश्व किशोर बाबा का राइट हैंड था, सारी बाहर की कारोबार वो करता था। ये मकान भी लिया उन्होंने लिया, मकान मालिक शराबी था, वो शराब के नशे में था, उसे पेपर करवा लिया, सस्ते में मकान मिल गया। तो जब भाव था, सारी खरीदारी यज्ञ की वो करता था। उस समय तो इतने ब्राह्मण नहीं थे, तो इधर उधर जाकर सब मार्केट में जाकर मालिक को मिलकर सब कंसेशन में खरीदारी करता था, कपड़ा है, जूता है, क्योंकि 300-400 लोग रहते थे, उन्हों की सारी खरीदारी करनी है ना। बहुत जाके सेवा करता था फैक्ट्री वालों की और कम दाम में ले आता। जब वो उसका ऑपरेशन हुआ और थोड़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा था, तो बाबा रात को सकाश देता रहा, पर अचानक 5वें-6वें दिन शरीर छोड़ा भाव ने। तो बहनों ने पूछा कि बॉडी को यहां ले आवे, कहते अभी शरीर तो, आत्मा तो निकल गए, बॉडी को क्यों यहां लाना है। जब बीमार था करंट देता था, सकाश देता था, पर मर गया तो कहा वहां ही अंतिम संस्कार कर दो बॉम्बे में। इतना न्यारा रहा, पर प्यार भी इतना था बाबा का कि हर एक समझता था मेरे को बाबा जितना प्यार करता है किसी को नहीं करता। तो इसी रीत से हमें प्यारा भी रहना, क्योंकि प्यार से किसी को भी वश कर सकते हैं। हमारे पास एक लंदन में एक करेबियन से एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था ना, हमारे पास आया था कोर्स कर। मैंने उसको पूछा कि तुम भगवान में मानते हो? नहीं, कोर्स करने आते हैं तो हम सवाल पूछते हैं ना। कहता है मैं हिंदू भगवान में नहीं मानता हूं। मैंने कहा क्यों? कहता देखो हिंदू धर्म कैसा है, माँ हमारी ब्राह्मण को भोजन करने बुलाती है। नहीं, जैसे श्राद्ध होता है कुछ होता है तो ब्राह्मण को बुलाते, और जब तक ब्राह्मण ना खाए तो बच्चों को भूखा रहना, ये कैसा धर्म? फिर कहता है देखो राम हमेशा तीर कमान लेकर सुवर्ण वृक्ष के पीछे पड़ा है, उसका चित्र देखो सदैव हाथ में तीर कमान है, और क्राइस्ट देखो कितना उनका मेढ़े में वो गोट से प्यार था, जो बीमार गोट को बकरी को या भेड़ बकरी को किसी को कंधे पर लेकर कूदता है, तो क्राइस्ट अच्छा या राम अच्छा? मैंने कहा ठीक है, तुम जब प्रार्थना करते हो कहा कौन सा चित्र सामने रखते हो? शंकर। मैंने कहा अभी अभी तुम कहता था मैं हिंदू भगवान को नहीं मानते हो, शंकर का चित्र क्यों रखा? कहा मैं जब यहाँ आ रहा था मेरी माँ ने शंकर का चित्र दिया का, रोज इसके सामने दीपक जगाना। मैंने कहा देखो माँ का प्यार ना, तो माँ की माननी पड़ी उसको, जैसे गांधी जी कहते थे हमेशा कि जब हिंदू धर्म आज देश विदेश में क्यों चलता है, वो माताओं ने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दी, क्योंकि करेबियन है ना, अमेरिका से भी बहुत दूर है, वहां हमारे बिहार यूपी के लोग हैं, आज से 300-400 वर्ष पहले गए थे, तो उसमें भी सूरीनाम है, वहां हिंदी भाषा चलती है, इंडियन जो ओरिजिन है ना हिंदी भाषा में बात करते हैं, और करेबियन में वो लोग रामायण की, जैसे यहाँ भी बिहार यूपी में रामायण का चौपाई वगैरह करते हैं ना, याद समझेंगे कुछ नहीं पर चौपाई जबानी करते हैं। तो क्या है कि देश विदेश में भी माताओं ने अपने प्यार से बच्चों में धर्म के संस्कार कुछ डाले, परंतु प्यार से। यदि कोई माँ बाप है गुस्सा करने वाले हैं, बहुत बच्चों को दबाते हैं, तो आजकल आपके बच्चे क्या करते हैं सुनते हैं आपकी? सुनेंगे नहीं। और क्या है, मुझे पंजाब का तो मालूम नहीं है, बम्बई में क्या करते हैं, माँ बाप बूढ़े बन जाते हैं ना, तो बूढ़ा घर में फेंक के आते, फेंक के लिटरली उसको बाहर रख के सामान एक देके बाहर से चले जाते हैं। वो वहां सेक्रेटरी को मिलकर कुछ बातचीत करना, एड्रेस देना, कुछ नहीं। यदि माँ बाप प्यार से नहीं पालते तो फिर बच्चे भी ऐसे करेंगे, या तो बहू के वश बच्चा भी ऐसा करता है। तो इसलिए प्यार भी जरूर करो, परंतु बाबा ने जैसे बैलेंस रखा लव और लॉ, प्यार भी देता था पर डिसिप्लिन भी बरोबर सिखाई, मर्यादाएं डिसिप्लिन है सब ठीक रीति से पालन करनी है, सवेरे रोज उठना है, अमृत वेले मुरली में रोज आना है, टाइम पर आना है, टीचर के पहले आना है। यहाँ मधुबन में जब बाबा मुरली चलाते थे ना, बाबा के मुरली के आने के पहले 5 मिनट आप देखेंगे सब दौड़ते जाएंगे, बाबा के पहले पहुंचना है। क्यों? कि बाबा टीचर के रूप में खड़े थे कि टीचर के आने के पहले स्टूडेंट को क्लास में आना। तो कायदे से ना, अभी भी मुरली में कहते हैं ना, उबासी खाते हैं, झुटके खाते हैं, इसका मतलब ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, उनको सामने नहीं बैठना है। सामने डांसिंग गर्ल के सामने ऐसे ऐसे करने वाले चाहिए। तो इसलिए लॉ भी बरोबर पालन कराते थे, परंतु लव भी इतना दिया। उस प्यार के कारण सभी ने अपना घर बार क्यों छोड़ा? इतना ज्ञान थोड़ी था शुरू में, इतना ही ज्ञान था मैं आत्मा हूं और भगवान को याद करता हूं, उसकी संतान हूं, निराकार शिव है वो भी नहीं जानते थे। परंतु शांति मिलती थी, सुख मिलता था योग में, प्यार बाबा से मिला तो बलियार गए। तो इसलिए हमें भी सबके साथ प्यार से रखना, सिर्फ हमारे घर वालों से नहीं, अड़ोसी पड़ोसी काम करने वाले साथ में है, सबके साथ प्यार का संबंध हो, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे कोई भी है, हमें प्यार से सबको चलाना। तो ये देखना है कि हम प्यार से चलें और चलाएं, परंतु नियम का भंग नहीं करना। क्योंकि यहाँ भारत में थोड़ा खाने पीने में हल्के हो जाते हैं ना, माँ बाप के घर गए, सासू ससुरे के घर गए या संबंधियों के घर में गए तो खाना खा लेते हैं ना, ऐसा कौन है जो नहीं खाते कहाँ बाहर का? ब्राह्मणों के हाथ का ही खाने वाले देखो मुश्किल 40-50 है, 200 में से 50, 1/4। परंतु विदेशी क्या करते हैं, वो घर में लड़के रहकर घर में रहकर खाना अपने हाथ से पकाते हैं, क्यों? माँ ज्ञान में नहीं है। हमारे पास दो भाई थे, वो घर जाते थे तो माँ बहुत प्यार से एकदम कहते, मैं तुम्हारे लिए मैंने ओवन साफ किया, उसका ये सब साफ किया, तुम्हारे लिए मैंने बहुत प्यार से सारा वेजिटेरियन बनाया। वो लड़के ने नहीं खाया। मैंने कहा क्यों? तो कहा उसका मुंह था ना माँ का, उसमें मुंह के वाइब्रेशन थे। और एक विदेशी था, हमने कोर्स कराया 71 में 72 में। तो एक मास के बाद मैंने पूछा, तुम रेस्टोरा में खाते हो? कहता रेस्टोरा में कैसे खाएंगे, वहां का वाइब्रेशन कैसा होता है। तो एक मास के स्टूडेंट ने रेस्टोरा में खाना बंद कर दिया, क्योंकि वहां वाइब्रेशन अच्छे नहीं होते। तो ये है देशी और विदेशी में फर्क। देशी क्या है? धीरे धीरे धीरे, पहले पढ़ाई करेंगे, पीछे कहेंगे भाई हाँ घर वालों को तो खुश करना है ना, तो धीरे धीरे खान पान की शुद्धि करेंगे, फिर सालों के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और वहां क्या है, झट को करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आपके पंजाब में झाटको होते हैं ना, तो क्या है, तो इसलिए नियमों का पालन अच्छी रीत से करना है तो योग लगेगा, नहीं तो क्या होगा। योग मन मन में नहीं ल, जब मोह होगा तो कहते हैं ना नष्टो मोहास्मृति लब्धा, जब तक मोह नहीं टूटा है तब तक बाबा की याद पक्की नहीं रहेंगी। तो इसलिए मैं और मेरा बहुत छोड़ना है। फिर बाबा का कहना ये है कि हमारा स्वीट और स्ट्रिक्ट का बैलेंस हो, एक तरफ मीठा रहो पर दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट भी रहो। स्पेशली हमारे बच्चे हैं, नौकर है, क्या है, आप बहुत मीठे रहेंगे तो वो समझेंगे माँ तो कुछ बोलने वाली नहीं है, चलो जो करना है करे, तो बिगड़ जाते हैं ना, बहुत प्यार से बिगड़ भी जाते हैं बच्चे। इसलिए स्वीट भी रहो पर स्ट्रिक्ट भी रहो। बच्चों को सब कुछ सिखाओ। क्या है, इंडिया में भाइयों को बहुत डिपेंडेंट कर देते हैं, ऐसे समझते होता है ना, लड़के लोग कुछ नहीं करेंगे तो वो चाहे विदेश में भी जाते हैं ना। हमारी न्यूजीलैंड की माताएं बहुत कंप्लेन करती थी क्योंकि न्यूजीलैंड में इंडियन माताएं हैं, काम भी करती है, कुछ भी काम मिला, जो भी काम मिला, फैक्ट्रियों में भी काम करना है, काम भी करना है, फुल टाइम कमाई करनी है, घर में आके खाना पकाओ, पति को गरम गरम रोटी दो, और पति भी थाली भी नहीं उठाएगा ना, उसको घर में आवे तब थाली टेबल सब तैयार रखना। माताएं कहे कि हम यहाँ पेंटिंग करना होता है पति को मदद करते हैं, बल्ब बदलना है हम पति को नहीं बुलाते, हम भाइयों का काम करती है, पर भाई उनको कपड़े भी बाथरूम में रख के दो, चाय का कप बनाना भी नहीं आता हा? तो ऐसे डिपेंडेंट नहीं बनना है। उनको बच्चों को भी सिखाओ, अपना कपड़ा साफ रखे, अपना कमरा साफ रखे। विदेश में तो नौकर चाकर नहीं है और बहने भी काम करती है तो क्या करेंगी, बहने कहेंगे मैं खाना पकाती हूँ, आप लोग बर्तन साफ करो, पति बर्तन साफ करेगा, बच्चे बर्तन पोंछेंगे। मतलब जो ऐसे डिसिप्लिन में रखना चाहती है सबका सहयोग लेंगे तब तो सुखमय रह सकेंगे ना, नहीं तो माताएं सब कुछ काम करती रहे। तो इसलिए स्वीट भी रहो स्ट्रिक्ट भी रहो, फिर बालक भी बनो मालक भी बनो, उसका भी बैलेंस रखो। क्योंकि आप लोग तो इतना विशेष वो नहीं है ना, टीम में काम करने वाले, क्योंकि आजकल है एक से तो काम नहीं चलता है ना, सेंटर वाली चार बहने हैं वो क्या करेंगे, कितना काम करेंगे। इसलिए भाई लोग भी यहाँ सेवा में तो मदद करते हैं तो टीम बनाते हैं विदेश में, कि हर एक का अभिप्राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा आदि। तो उसमें मास्टर बन के राय दो, अपना ओपिनियन दो, और फिर जो फाइनल हो वो बालक बन के स्वीकार करना है। बालक का काम है आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार। तो इस रीति से बालक भी हो मालक भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो। बाबा कहते हैं जो मोड़ सकता है अपने आप को वो प्योर गोल्ड है, ठीक है ना, मोड़ना अर्थात फ्लेक्सिबल होना, ऐसे नहीं, मेरा ये विचार है ऐसे ही होना चाहिए। इंडिया की बहनें थोड़ा उसमें ऐसी नहीं है, तो कौमाती नहीं है, इसलिए भाई लोग ही सारा निर्णय करेंगे कौन सा सोफा लाना है, क्या कलर पसंद करना है, क्या खरीदारी करनी है। विदेश में तो क्या होता है, दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे और दोनों अपना विचार देंगे। तो नेचुरली है, यदि कोई अपनी हट पर रहेगा कि नहीं मैं जो कहूं वही कलर का सोफा चाहिए तो क्या होगा, वहीं झगड़ा हो जाएगा शॉप में ही। तो इसलिए मोड़ो भी अपने आप को, परंतु कहां कहां अपने विचारों पर अड्डे भी रहो। क्यों है, एक पति कहेगा चलो आज फिल्म में जाना है, पत्नी कहेंगे मुझे सत्संग में जाना है, तो खिटपिट हो जाएंगी ना। हा? तो इसलिए कहां मोड़ भी जाओ और कहां फिर अपनी भी करो, बैलेंस रखना ताकि घर में शांति रहे। तो इसलिए शुरू में तो नहीं कि इतना उन्होंने युक्ति से चले के, क्योंकि हमारे पास जो माताएं आती थी कहेंगे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, आकर क्लास करके चली जाती थी। तो ऐसे कहा, बाबा कहते हैं युक्ति से चलो, कहा राजयुक्त, कहा योग युक्त, जितने होंगे तो युक्ति युक्त भी रहेंगे तो घर में शांति भी रहेगी। तो युक्ति से पवित्र रहने के लिए भी बाबा कई युक्तियां बताते हैं ना, कि कैसे अपने को बचाओ। तो हमारे पास माता आती थी कहती थी मुझे पीठ में बहुत दर्द होता है, डॉक्टर ने कहा है विकारी संबंध में नहीं आना। तो बेचारा पति मान गया। तो कहाँ कहाँ ऐसे युक्ति से चलना है, कहाँ फिर शक्ति भी चलानी है अपनी। तो एक माता थी उसके पास पति था ना, हमारे साथ झगड़ने आया, हमको कहता है आप मेरी पत्नी को अपने सेंटर पर नहीं आने दो, तो वो आप कहां कौन से शास्त्र में लिखा है कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो, ब्रह्मचारी रहो। मैंने कहा देखो भाई ये तो मंदिर है, मंदिर में पुजारी किसी को कहेगा कि आप नहीं आओ मंदिर में, जिसको अपने घरवाली को नहीं जाने देना है वो अपने घरवाली को बंद करे ना घर में, मैं क्यों मना करूं। तो उस भाई ने कई बार उस पत्नी को घर से निकाल दिया, आखिर वो ज्ञान में आ गया, पत्नी भी मजबूत रही। कई बार मायके पर चली गई फिर आ गई, धीरे 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 बच्चे भी आ गए ज्ञान में, पति भी आ गया। तो क्या है, क्या हम जितना दृढ़ रहेंगे ना नियमों पर, धीरे धीरे छोड़ देंगे घर वाले कि चलो ये तो सुनने वाली नहीं है, चलो माथा क्यों खपाए। तो इसी रीत से राजू रमजबास की बाबा कहते हैं हमें कहां कहां सफेद झूठ भी बोलना पड़ता है, बोलेंगे एक और करेंगे दूसरा। तो बैलेंस रखना है, ये देखना है, और शांति भी रखनी है घर में, और ऐसा वातावरण बनाना है जो बच्चे भी हमारे से गुणग्राहक करें। क्योंकि यदि हम गुस्सा करें और बच्चे को कहें शांत रहो तो क्या होगा, बाप सिगरेट पिए और बच्चे को कहे सिगरेट पीना अच्छा नहीं है तो क्या होगा, उसका असर नहीं होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं देखो पंडित तो है भाषण करके चला जाता, परंतु ब्रह्मा कुमारियां जो बोलती है वो करती है। और हमारे पास एक स्लोगन भी था ना कि जो जिसका बोलना करना सोचना एक है वो श्रेष्ठ नर कहलाए। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा जो सोच चले वो बोलो वो करके दिखाओ। और जैसे बाबा था नशा भी था पर अभिमान भी नहीं था ना, कितना नम्र था, कभी फूल स्वीकार नहीं करते थे, कहते तो देवताओं को सौंपता है, माला नहीं, हार तोड़ा नहीं, बुके नहीं, कुछ नहीं, गुलदस्ता नहीं, कहा ये देवताओं को सौंपता है। और बम्बई में आता था, कहे कोई स्टेशन पर नहीं आवे लेने, मैं गुप्त रीते आया हूँ, गुप्त रहूंगा, बच्चे जाने बाप जाने। तो नम्र इतना था, जो खुद गद्दी पर बैठता था वो आने के पहले दूसरा भी योग कराते थे। तो इसलिए ऐसे नहीं था कि बाबा की गद्दी पर और कोई नहीं बैठ सकता है, कोई भी बैठता था। तो नम्र भी था तो नशा भी था, कल जाकर मैं कृष्ण बनूंगा नारायण बनूंगा, तो नारायणी नशा था। तो नशा भी हो तो नम्रता भी हो, बैलेंस, और इकोनॉमी भी हो तो उदार भी हो। जब हम शॉपिंग करके आते थे ना, बाबा पूछते थे ये फल कितने में लिया, क्योंकि यहाँ तो फल मिलता नहीं, तो दिल्ली मुंबई से हम फल ले आते थे, एप्पल लाया, जब सीजन जो सीजन का फल है ले आएंगे। तो बाबा पूछता था क्या दाम दिया, और बाबा को मालूम था कितना दाम होना चाहिए, नहीं तो कहता था बुद्धू हो अजाम हो कोई सेवा के लिए हाँ लिटरेचर नहीं ले जाता था, तो कहते हैं हजाम हो क्या हाँ। तो इसलिए इकोनॉमी कम खर्च वाला नशीन कहते हैं ना, तो जो भी बाबा के बच्चे कम खर्च में खरीदारी करते थे तो बाबा को बहुत प्यारे लगते, और उदार भी ऐसे था। जब मैं पहली बार आई तो बाबा ने हमारे सब घर वालों के लिए गिफ्ट दी, उदार। यहाँ आते हैं चाहे आप बॉक्स में कुछ भी डालते हो नहीं डालते हो, आपको गिफ्ट मिलती है ना, सोचते हैं क्या गिफ्ट देने वाले। स्पेशली जब समर्पण समारोह होता है, मुनि बहन कहती है जिसको जो देना है दो, यज्ञ तरफ से आपको ये समर्पण होने की सौगात मिल रही है। तो इसलिए बाबा ने हमको उदार रहना सिखाया कि जो भी बाबा के घर आवे पेट भर के खाना खाए और सौगात। और जिस जिस प्रांत के होते थे ऐसा ऐसा खाना पकाते हैं ना, क्योंकि साउथ इंडिया के आएंगे तो दही छाछ उनको रोज चाहिए, चावल में दही डाल के जिस प्रकार के चावल बनाते हैं तो ऐसे बनाते थे, कॉफी जरूर रखते थे साउथ इंडिया वाले। नॉर्थ इंडिया वाले आएंगे तो मक्की और साग आदि आदि देंगे, जो भी सीजन में मिल सकता है ऐसे। तो तो इसी रीत से बाबा बहुत उदार दिल भी थे और बच्चों की संभाल भी बहुत करते, नष्टमुआ भी थे तो संभाल भी करते थे। कभी अकेली बहन जाती थी तो कहते थे पहुंच के तार करना कि आराम से पहुंच गई, तो इसलिए संभाल भी करते थे। और कोई थक के आता था पांव भी दबाते थे, पांव भी गर्म पानी नहीं। दादी अपना अनुभव सुनाती है, जानकी दादी एक बार कादव कीचड़ में ऊपर आई तो बाबा ने गर्म पानी की बाल्टी तैयार रखी थी कि सफाई करो, तो मालिश भी करते हैं पर सफाई भी करते हैं। तो इसी रीत से आप देखेंगे बाबा ने अपने जीवन में करके दिखाया, उसी रीत से हमें भी क्या करना है, बैलेंस रखना है ताकि घर वाले भी कंप्लेन ना करें कि सवेरे उठा सफेद कपड़ा पहना चली, शाम को चली सेवा में, बच्चों का ख्याल नहीं करती है तो छोटे बच्चे ख्याल भी करना पड़ता है। आप लोग तो सब सामने तो बुजुर्ग देखने में आते हैं, परंतु जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा कहते हैं उनको भी संभालना, इसलिए छोटे बच्चों वाली माताओं को बाबा समर्पित होने की छुट्टी नहीं देते, ये आपकी ड्यूटी है। जिसकी जन्म का पालना करना है तो इसी रीत से बाबा ने हमें सब बातों का बैलेंस रखने सिखाया, तो इससे क्या है, खुद भी खुश रहेंगे औरों को भी खुश रखेंगे, खुद को भी दुआएं मिलेंगी औरों को भी हम दुआएं दे सकेंगे। तो इसलिए अपने आप को शिव शक्ति समझकर और हिम्मत रखकर चलना, क्योंकि इस ज्ञान के मार्ग में हिम्मत चाहिए, सामना करना पड़ता। तो सामना करने की भी शक्ति हो तो समाने की भी शक्ति हो, किसी का भी गलती है तो बाबा कहते हैं ना वो आपको बदनाम करे आप उसको मित्र समझो, निंदा करना वाले मित्र समझो, गाली देने वाले को गले लगाओ, शुभ भावना आ रहे के लिए प्रेम की भावना रखो, तो उससे क्या होगा कि आपका जीवन भी खुशनुमा और परिवार भी खुश रहेगा, क्योंकि माँ बाप के आधार पर बच्चे भी वही सीखेंगे ना, हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखकर बच्चे भी हमारे जैसा चलेंगे। तो इसलिए हमें देखना है कि ऐसे नहीं कि घर में रहते हैं क्या करे, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, योग में बैठने का टाइम नहीं है, ऐसे बहाने नहीं, मुझे करना है, ये लक्ष्य रखना है कि मुझे सवेरे सोना सवेरे उठना। तो जितना नियमों का पालन करेंगे अपने पर ही फायदा होगा, हम अपने पर कृपा करते हैं, कोई बाबा के ऊपर थोड़ी हम दया करते हैं। तो इसलिए बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में लानी है, तब हम हमारा योग भी पक्का होगा। और महावीर महावेदी का जो टाइटल है वो हम प्राप्त कर सके। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठ।
तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल से हम थैंक्स करते हैं। दीदी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता आप सबने भी देखी होंगी, बहुत एक्यूरेसी से पंक्चुअल टाइम पर क्लास को शुरू भी किया और इतना ही पंक्चुअलिटी और एक्यूरेसी से उसे पूरा किया है। दीदी जी, इस चीज को हम हमेशा के लिए आज आपके पास से नोट करके जाएंगे। थैंक यू दीदी।